ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी ऐप या नमो ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वेक्षण के पहले दिन ही देश भर से 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के सर्वेक्षण में शामिल होने का आग्रह किया था। यह सर्वेक्षण लोगों को सरकार के साथ अपनी प्रतिक्रिया और राय सीधे साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और भविष्य की नीतियों को बनाने में विचार किया जाए। पहले दिन ही 5 लाख से अधिक प्रतिक्रियाओं के साथ ये सर्वेक्षण सीधे और सार्थक तरीके से लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज चेन्नई में मीडिया को जानकारी देते हुए शेखावत ने कहा कि भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमृतकाल की ओर विकास की एक नई यात्रा शुरू की है।
Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, India has embarked on a new journey. That is a journey of development during this Amrit Kal of a developed India focusing on service, good governance and welfare of the poor people.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल काउंसिलर गाय परमेलिन के साथ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और धातु MEM उद्योग पर एक उत्पादक व्यापार गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, साझेदारी को सुविधाजनक बनाने और संयुक्त कार्यबल प्रशिक्षण पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यदि आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं तो वे पाकिस्तान सहित किसी भी देश में हो, उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करता, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देता है। विदेश मंत्री ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की लड़ाई किसी विशेष देश के साथ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अंतिम संसदीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए अमरीका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा किया। श्री थरूर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकें की। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में उन्हें अपनी चिंताओं के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में AI संचालित भाषा प्रौद्योगिकी विकसित करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषाई उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के दृष्टिकोण से उपजी है। तमिलनाडु के चेन्नई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AI तमिल पहल का शुभारंभ करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक को एकीकृत करने के व्यापक मिशन का एक हिस्सा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन पर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने देश में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। फुटबॉल में AFC एशियाई कप क्वालिफायर के ग्रुप सी मैच में भारतीय सीनियर पुरुष टीम और हांगकांग का मुकाबला जारी है। ताजा जानकारी मिलने तक दोनों टीम दूसरे हाफ में 0-0 की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।